हरे हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, मैं आप सब वैष्णवों का आशीर्वाद चाहता हूँ। आज के पवित्र दिन, श्री बलराम जयंती के दिन, भगवान श्री बलराम जी के बारे में कुछ बोलने के लिए यहाँ पर देखकर इतनी प्रसन्नता होती है कि पूना के इस पवित्र शहर में कितनी बड़ी संख्या में लोग बलराम जी का आविर्भाव दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज शुक्रवार है जो कि छुट्टी का दिन नहीं है, फिर भी भक्तों के लिए हर एक दिन छुट्टी का दिन होता है। हॉलीडे मतलब होली डे, पवित्र दिन। जिस दिन आप भक्तों के साथ रहकर भगवान के कथा को सुनते हैं और कीर्तन में भाग लेते हैं, हरि नाम में, वो दिन ही पवित्र दिन है। तो मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि यहाँ पूना में श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी के अहेतु की कृपा से भक्तों की संख्या हमेशा बढ़ रही होती है और लोग कृष्ण कथा सुनने के लिए आतुर रहते हैं। आज बलराम जी का आविर्भाव दिवस है, जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। दाऊ जी का भैया, कृष्ण का नैया, ये भाई हैं, इसलिए उनका आज गुणगान हम करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से उनका गुणगान करते हुए धीरे धीरे हम भगवान कृष्ण की लीलाओं, जो अगले हफ्ते जन्माष्टमी का उत्सव है, उसकी हम तैयारी करेंगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण पुस्तक में कि कृष्ण और बलराम, ये दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। एक ही अंतर है कि कृष्ण जो है वो श्याम रंग के हैं, काले रंग के हैं, और बलराम जी जो हैं वो गोरे रंग के हैं। इनफैक्ट एक बार कृष्ण के सखा सब मिलकर कृष्ण को बताने लगे कि हे कृष्ण, आप तो नंद महाराज के पुत्र नहीं हो, क्योंकि नंद महाराज गोरे हैं, यशोदा माता गोरी है, फिर आप कैसे काले हो गए। जब कृष्ण ने सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक बालक से कहा जाए कि आपके पिता नहीं है, तो कृष्ण रोने लगे, अपनी माता के पास गए और रोते रोते बताया कि ये लोग बोल रहे हैं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मेरा जन्म एक शिकारी के यहाँ हुआ था और उसने मुझे एक पेड़ के पास रख दिया और नंद और यशोदा मुझे ले आए। तब यशोदा माता बोली, नहीं, आप मेरे पुत्र हो निश्चित। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप नारायण भगवान के सामने सौगंध रहकर कहो। यशोदा माता ने सौगंध देकर कहा और फिर कृष्ण प्रसन्न हो गए। जगत के पिता को खुशी हुई कि नंद महाराज मेरे पिता हैं। तो कृष्ण और बलराम दोनों भाई हैं और इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। बलराम जी का जो तत्व है वो गुरु तत्व है। आज सवेरे भागवतम क्लास में जो भक्त यहाँ थे, हिज ग्रेस श्रीमान मुरारी प्रभु जी ने बहुत सुंदर समझाया कि कैसे बलराम जी को अपने गुरु मानना है। जितने भी गुरु हैं हमारी परंपरा में, वो सब बलराम जी के अवतार, बलराम जी के ही प्रतिनिधि हैं। और बलराम का एक अर्थ है बल, मतलब आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। बलराम यानी भौतिक बल नहीं, आध्यात्मिक बल। हम सब कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए हमें शक्ति की जरूरत है, और बलराम जी वो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। आज के दिन व्रत रखने से 12 बजे तक और कीर्तन में भाग लेने से और साथ में कथा सुनने से, प्रसाद लेने से, आज के दिन इस उत्सव को मनाने से हमें बलराम जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में तेज रफ्तार के साथ आगे प्रगति कर सकते हैं। यही बलराम जी हैं जिनका एक विस्तारित स्वरूप है अनंत शेष। अनंत शेष कितने महान हैं कि उनके हर एक फण के ऊपर ब्रह्मांड है, उनके हजारों फण हैं और अनेक अनेक ब्रह्मांड एक एक फण के ऊपर, और ब्रह्मांड ऐसे हैं जैसे कि मानो राई के दाने हो। अनंत शेष को कोई दर्द भी नहीं होता उठाने में। वो अनंत शेष जो है वो भगवान बलराम जी के अंश के अंश हैं। वही बलराम जी हैं जो कि अनंत, जो कि संकर्षण के रूप में है। भगवान कृष्ण के पहले विस्तारित स्वरूप बलराम जी हैं। बलराम जी से वासुदेव, फिर संकर्षण, फिर प्रद्युम्न और फिर अनिरुद्ध प्रकट होते हैं। और फिर उन संकर्षण से दूसरे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध प्रकट होते हैं। इसलिए बलराम जी का जो तत्व है वो बहुत ही गहन है। बलराम जी हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए हमेशा। इसलिए भगवान के धाम में जो बिस्तर है भगवान का छत्र है, भगवान का धाम स्वयं है, भगवान के आभूषण हैं, ये सब बलराम जी का ही विस्तारित स्वरूप है। गुरु का मतलब है जो सिखाए, जो टीचर है, शिक्षक है। और सबसे अच्छा शिक्षक वो होता है जो अपने उदाहरण से सिखाए। अब बलराम जी अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कैसे हमें कृष्ण को हमेशा उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। तो ये बलराम जी त्रेता युग में लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए, जब भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई थे। और लक्ष्मण एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमेशा भगवान राम की आज्ञा को शिरोधार्य करते। जब छोटे थे तो राम और लक्ष्मण ऐसे रहते जैसे बस अभिन्न हो, जैसे कभी दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। जब भगवान राम वनवास के लिए निकले तो लक्ष्मण बोले मैं भी जाऊंगा साथ में। आजकल कोई एक भाई को तकलीफ है तो दूसरा बोलेगा हरि बोल बाय बाय, आप जाओ जंगल में, मैं आपका भी राज्य का हिस्सा लूंगा। लेकिन लक्ष्मण बोले नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा। और 14 साल वनवास में रहे। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अयोध्या में ही थी, भगवान राम अपनी पत्नी के साथ थे, दोनों का विवाह एक ही दिन हुआ था। लेकिन लक्ष्मण अपनी पत्नी को भी नहीं ले गए, सब सुखों को त्याग करके एक सेवक के रूप में रहते। चित्रकूट पर्वत पर जब भगवान राम सीता के साथ विहार कर रहे थे, उस समय लक्ष्मण दूर एक पर्वत पर खड़े रहते और निगरानी रखते कि भगवान को कोई खतरा नहीं हो, एक सेवक की भावना से। पंचवटी में जब भगवान राम सीता के कहने पर हिरण को पकड़ने गए, तब उस समय लक्ष्मण को बताया कि आप यहीं पे रहो, सीता की रक्षा करो। और भगवान की आज्ञा पालन करके वो खड़े रहे। लेकिन फिर वो मरीच जब पुकारने लगा, लक्ष्मण लक्ष्मण सीता, सीतादेवी बोली जाओ जाओ, भगवान राम खतरे में है। लक्ष्मण ने बताया भगवान को कोई खतरा नहीं है, ये मरीच की आवाज है। लेकिन सीतादेवी बोली नहीं नहीं जाओ जाओ, बोला नहीं कोई खतरा नहीं है, नहीं जाओ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम गलत इरादे से हो, तुम भाई नहीं हो राम के, तुम शत्रु हो। लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा और उनको जाना पड़ा। सीता अकेली थी, रावण ने उनका हरण कर लिया। और भगवान राम लक्ष्मण को डांटने लगे कि क्यों आप आए। सीता ने डांटा इसलिए भगवान राम के पास गए, भगवान राम डांटने लगे। और अंत में पूरी रामायण का युद्ध होने के बाद सीता देवी लौट कर आ गए। और कुछ वर्ष बाद जब भगवान राम ने देखा कि एक धोबी, उसको अच्छा नहीं लगा कि सीता को वापस रखा है, तो उन्होंने भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा अब सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ के आओ। लक्ष्मण सोचने लगे ये सब बहुत मुश्किल सेवा है, छोटा भाई बनना अच्छा नहीं है, इसलिए अगले अवतार में बड़ा भाई बनूंगा। इसलिए बड़े भाई के रूप में आए। आप सब जानते हैं कि कैसे भगवान बलराम जी प्रकट हुए। वसुदेव जी के कई पत्नियां थी, उसमें से एक थी देवकी और एक थी रोहिणी। देवकी वसुदेव जी के साथ में रह रही थी और कंस के भय से बाकी पत्नियां अलग अलग स्थान में रह रही थी। रोहिणी देवी ये नंद महाराज के घर पे रहती थी। नंद की पत्नी यशोदा थी और रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी थी, क्योंकि वसुदेव और नंद बहुत अच्छे मित्र थे तो उनके घर में ही रहते थे। आप सब जानते हैं वो कहानी जन्माष्टमी की, कैसे भगवान कृष्ण के प्रकट होने से पहले जब वसुदेव जी का विवाह हो रहा था देवकी के साथ, कंस स्वयं अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था और उस समय उसको आकाशवाणी सुनाई पड़ी, अरे मूर्ख कंस, जिसको तुम लेकर जा रहे हो उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल सिद्ध होगा। तो वसुदेव जी कंस तो बहुत क्रोधित होकर देवकी को मारने वाले थे, लेकिन वसुदेव जी ने समझाया आप चिंता मत करो, आपको देवकी से डर नहीं, आठवें गर्भ से डर है, इसलिए कोई चिंता मत करो, आपको हम आपको हर एक पुत्र लाकर सौंप देंगे। तो पहला पुत्र हुआ, उसका नाम था कीर्तिमान। जैसे उस पुत्र को लेकर आए तो कंस ने सोचा मुझे डर तो वसुदेव के आठवें पुत्र से पहले से नहीं, अब इसको वापस लेकर जाओ। इतने में नारद मुनि आ गए, ट्रांसेंडेंटल। नारद मुनि सोच रहे थे जन्माष्टमी जल्दी मनानी चाहिए, भगवान कृष्ण का अवतार जल्दी होना चाहिए। तो नारद मुनि बोले कि देखो कंस सुनो, मैं अभी अभी नंदन कानन गार्डन से आ रहा हूं, मैंने देखा देवताओं की एक मीटिंग हो रही थी, काउंसलर मीटिंग, और सारे देवता मिलकर आपस में पता है क्या डिस्कस कर रहे थे, उनका मेन टॉपिक क्या था, ये कैसे कंस को मारा जाए। और मैंने सुना है कि सारे देवता यदुवंश भी प्रकट होने वाले हैं, और जान लो ये सब मिलकर तुम्हारी मृत्यु का योजना बना रहे हैं, इसलिए तुम इंतजार मत करो, पहला पुत्र भी आठवां पुत्र हो सकता है, आठवां भी पहला हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसे गिनते हो। तो कंस, नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया, वैष्णव तो दयालु होने से वैष्णव को नारद मुनि को बोलना चाहिए था कंस को सर्वधर्मान परित्यज कृष्ण की शरण में आ जाओ, क्योंकि साधु जानते हैं कि कौन सी दवाई किसके लिए कार्य करती है। तो नारद मुनि सोच रहे थे कि कंस के लिए बेस्ट दवाई है कि वो पाप करे, और पाप करने के बाद उसको रिएक्शन मिले और अंत में भगवान आके उसका अंत कर दे। तो कंस ने एक एक करके फिर छह पुत्रों की हत्या कर दी। ये छह पुत्र थे, ये मूलतः कौन थे, शास्त्रों में बताया गया ब्रह्मा जी के छह पुत्र थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीची, और मरीची के छह पुत्र थे। ये छह पुत्र एक बार यानी ब्रह्मा जी के पोते हो गए, ग्रैंडसन। तो एक बार उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भगवान की दिव्य इच्छा से अपनी पुत्री की तरफ आकर्षित हुए, माया इतनी शक्तिशाली है, भगवान दिखाना चाहते थे। तो जब उनके पुत्र के पुत्रों ने देखा तो हंसने लग गए, ये देखो ये क्या हमारे दादाजी क्या कर रहे हैं, तो हंसने लग। तब उनको शाप मिला, क्योंकि जो बड़े बड़े वैष्णव होते हैं महात्मा होते हैं उनके क्रिया को समझा नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी का अपने पुत्री की तरफ आकर्षित होना या शिव जी का मोहिनी मूर्ति के प्रति आकर्षित होना ये भगवान की लीला का भाग था, परंतु ब्रह्मा जी परंतु मरीचि के पुत्र हंसे, इसलिए उनको शाप मिल गया कि जाओ तुम असुर बन जाओ। तो अगले जन्म में वो असुर परिवार में जन्मे, उनके पिताजी का नाम था कालनेमी। तो कालनेमी के पुत्र होने के समय वो सोचने लगे कि हमें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है। उनके पिताजी का नाम था कालनेमी, और कालनेमी के पिताजी थे हिरण्यकश्यपु या उनके परिवार वाले थे। तो जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए, उन्होंने भी वही वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु नहीं हुई देवताओं से मानव से इत्यादि। जब हिरण्यकश्यपु को पता चला बहुत क्रोधित हो गए कि आप मेरे परिवार वाले होकर मेरी इजाजत के बिना मेरी अनुमति के बिना आप इस तरह से ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हो, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि इस जन्म में जो तुम्हारे पिता हैं अगले जन्म में वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बने। तो वही कालनेमी जो उनके पिता होते हैं अगले जन्म में वो कंस बन जाता है। और आप जानते हैं ये जो छह पुत्र होते हैं ये षड रिपु हैं, और इनको मार दिया जाता है कंस के द्वारा। बहुत अभी मैं एकदम आगे का बताऊंगा, फास्ट फॉरवर्ड करते हुए कृष्ण की वृंदावन लीला के बाद जब कृष्ण द्वारका में पहुंचते हैं, जब देवकी के पास रह रहे होते हैं, तब एक बार देवकी पूछती है उनसे कि आप अपने गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्र को लेकर आए वापस, क्यों नहीं मेरे भी छह पुत्रों को भी वापस ले आइए। तो कृष्ण गए महाविष्णु के पास और सब छह पुत्रों को वापस ले आए। वो छह पुत्र बहुत बड़े हो गए थे अभी तक, लेकिन अपनी माता को देखकर उनके अंदर स्नेह जागृत हुआ और देवकी के स्तनों से भी दूध बहने लगा। और जब ये छह पुत्रों ने वो दूध पिया, क्योंकि महाप्रसाद था, सबसे पहले कृष्ण ने पिया था बहुत साल पहले, महाप्रसाद हमेशा महाप्रसाद होता है, तो वो पीते ही वो छह पुत्रों का उद्धार हो गया और वो शुद्ध होके चले गए। तो ये षड गर्भ हैं, ये प्रतिनिधि करते हैं हमारे हृदय के छह अनर्थ, काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य। और देवकी जो है, देवकी ये प्रतिनिधित्व करती है भक्ति का। तो कंस ये छह पुत्रों के मृत्यु का कारण बनते हैं। तो भक्ति के, कृष्ण के प्रकट होने के लिए पहले ये छह अनर्थों का नाश होना जरूरी है, और ये छह अनर्थों का नाश कौन करता है? कंस। और कंस किस बात का प्रतीक है? कंस इस बात का प्रतीक है कि भय, भौतिक अस्तित्व का भय। अगर आपको भौतिक अस्तित्व का डर है तो आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ोगे। हमको डरना चाहिए माया से, वो डरना चाहिए कि कहीं मैं कृष्ण को भूल नहीं जाऊं। भक्त को और कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक ही डर होता है कि कहीं मैं कृष्ण को भूल नहीं जाऊं, हर क्षण में कृष्ण को याद करूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से कृष्ण को याद करने से हम निर्भय हो जाते हैं। भजे हूं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। तो छह बालकों की मृत्यु के बाद सातवां गर्भ स्वयं बलराम जी होते हैं। भगवान कृष्ण योग माया को आदेश देते हैं कि आप ये जो सातवां गर्भ है इसको देवकी के गर्भ से रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर दो। जो आजकल साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि ट्रांसफर वूम्ब का पहले से ही था, ये मूर्ख वैज्ञानिक अभी सीख रहे हैं, हमारे वैदिक शास्त्र पहले ही जानते थे, बच्चे हैं साइंटिस्ट अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन शास्त्रों में सब कुछ है, इवन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सब कुछ है। तो भगवान की दिव्य शक्ति से योग माया उनको स्थानांतरित कर देती है रोहिणी के गर्भ में, और इसलिए बलराम जी का नाम होता है रोहिणी नंदन या रोहिणी सूत, रोहिणी कुमार, और उनका एक नाम हो जाता है संकर्षण, क्योंकि उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के घर में स्थानांतरित किया गया, इसलिए उनका नाम हो जाता है संकर्षण, आकर्षण से संकर्षण, और क्योंकि वह आध्यात्मिक बल से भरे हुए हैं इसलिए उनका एक नाम होता है बलभद्र, और क्योंकि वो सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं इसलिए उनका नाम हो जाता है राम। तो राम का मतलब बलराम भी है, राम के कई अर्थ हैं। एक बार हैदराबाद में प्रभुपाद से कुछ डिवोटीज आपस में बातचीत कर रहे थे, एक झगड़ा कर रहे थे, एक बोल रहे हैं कि राम का मतलब है बलराम, एक बोलते नहीं राम का मतलब है रघुपति राघव सीताराम वो राम, और कोई बोले राम का मतलब है परशुराम। इसलिए प्रभुपाद से पूछा कि क्या सही है, प्रभुपाद जी मुस्कुराकर बोले तीनों सही हैं। आप झगड़ने के बजाय गाओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बलराम जी आपको बल से गाना चाहिए, आप लोग बलराम जी बहुत दयालु हैं, सिर्फ 12 बजे तक फास्टिंग करना होता है भगवान कृष्ण के लिए, रात के 12 बजे तक, थोड़ा बल से गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री दाऊ जी महाराज की। वृंदावन में एक स्थान है, दाऊ जी बोलते हैं उसको, यहाँ पर बलराम जी की बहुत सुंदर मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति जो वज्रनाथ ने स्थापित की थी 5000 साल पहले, उसको दाऊ जी बोलते हैं। बलराम जी का एक नाम है दाऊ जी, रोहिणी प्रिय, रोहिणी सूत, रोहिणी नंदन, संकर्षण और बलभद्र और राम बलराम, इस तरह उनके अनेक सुंदर नाम है। तो बलराम जी का जन्म आज के दिन गोकुल में होता है, रोहिणी के गर्भ से नंद महाराज के घर में, और बलराम जी सबके मन को आकर्षित करने लगते हैं। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, ये कहानी आप जन्माष्टमी के दिन सुनोगे भगवान कृष्ण के प्रकट होने की, और कृष्ण और बलराम दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं। हालांकि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं और बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, लेकिन दोनों रहते हैं नंद महाराज के घर में और दोनों बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं खेलते हैं। कभी कभी जब वो छोटे बालक होते हैं तो गोपियां बोलते हैं कृष्ण बलराम आप नृत्य करो, आप नृत्य करोगे तो मिठाई मिलेगी, और कृष्ण बलराम नृत्य करने लगते हैं, जो सारे मिठाइयों को बनाने वाले हैं वो नृत्य करने लगते हैं। कभी कभी कृष्ण और बलराम खेल रहे होते हैं, और जब वो खेल रहे होते हैं तो सब भूल जाते हैं कि घर में क्या करना है, भोजन के लिए कब जाना है। कृष्ण बलराम खेलते हैं इसलिए इस दुनिया में सब बच्चे भी खेलते हैं, लेकिन कृष्ण बलराम अच्छे गेम्स खेलते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेलते। कृष्ण बलराम खेलते हैं कभी कभी ब्लाइंड मैन्स ब्लफ, यानी आंखों में बंद करके पता लगाना कि कौन है। कभी कभी वो खेलते हैं कि एक फल को आकाश में फेंकते हैं और दूसरे फल को हाथ में लेके उस उड़ते हुए फल को मारना होता है। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर गेम्स खेलते हैं। कभी कभी कृष्ण भगवान ब्रजवासी बलराम जी को बोलते हैं, ये मोर जो है ठीक से नाच नहीं रहा, मैं नाच के दिखाऊंगा, और कृष्ण नाच के दिखाते हैं। कभी वो कोयल की आवाज़ करते हैं, आप ट्राई मत करना। आज हम लोग सुबह ट्राई कर रहे थे लेकिन अलग अलग प्राणी सुनाई पड़ रहे थे। इस तरह कृष्णा और कृष्ण के सखा कभी मेंढकों की आवाज़ करते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, और रोज अपने सखाओं के साथ कृष्ण बलराम गाय चराने जाते हैं। एक दिन जब वो ग्वाल बालों के साथ जाते हैं, सब ग्वाल बाल मिलकर कृष्ण बलराम के पास आते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, हे बलराम, यहाँ पर एक बहुत सुंदर वन है, उसका नाम है तालवन, वहाँ पर बहुत सुंदर मीठे फल हैं, उनकी सुगंध बहुत हमें आकर्षित कर रही है, हमें भूख भी लगी है, और ये फल कितने मीठे हैं, कृष्ण बलराम आपको भी शायद उसकी सुगंध आ रही होगी, हम सब उसका आस्वादन करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पर एक बड़ा भयंकर असुर रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर, और ये गधे के रूप में रहता है। असुर सारे गधे होते हैं लेकिन इसका रूप भी गधे का है। ये गधा है और उसके मित्र भी गधे, नेचुरली रिश्तेदार भी गधे, उसके पापा भी गधे और उसके बेटे भी गधे, सब पूरा फैमिली के साथ रह रहे हैं, और किसी को जाने नहीं देते वहां पर, किसी को फल खाने नहीं देते। हे कृष्ण बलराम, आपने बहुत सारे असुरों को मारे, अघासुर, बकासुर, पूतना, क्यों नहीं इनको भी मारा जाए। तो ये जो स्थान है तालवन, ये मथुरा और गोवर्धन के बीच में है, और कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ जाते हैं। आचार्यगण टीका करते हुए बताते हैं कि वास्तव में कृष्ण बलराम, कृष्ण भाव के सखा जो हैं, वो अपने लिए नहीं चाहते थे फल, वो चाहते थे कि कृष्ण को फल मिले। लेकिन अगर वो बोलेंगे कृष्ण बलराम आपके लिए हम फल लाना चाहते हैं, तो कृष्ण बलराम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो कृष्ण बलराम को बोलेंगे कि हमें चाहिए फल, तो कृष्ण बलराम जरूर जाएंगे। ये तरीका है भक्तों का। ये शुद्ध भक्त सोचते हैं कैसे कृष्ण प्रसन्न हो, हमारा उल्टा होता है, हम शुद्ध नहीं है तो हमें डोसा अच्छा लगता है तो हम कृष्ण को बोलते हैं डोसा अच्छा है। हमें आइसक्रीम अच्छी लगती है तो कृष्ण मॉडर्न आइसक्रीम भी खा लेते हैं। ये शुद्ध भक्त सोचते हैं कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो सब सखा मिल के जाते हैं, कृष्ण बलराम जोर जोर से पेड़ों को हिलाने लगते हैं और सारे फल गिरने लग जाते हैं, और उतने में मिस्टर धेनुकासुर बाहर आते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और बलराम जी असुर को अपने पहले बलराम जी पे लात मारते हैं पीछे से, फिर दूसरी बार फिर लात मारने आते हैं। इस बार जब लात मारने आते हैं तो बलराम जी उसको पैर से पकड़ते हैं, गोल गोल घुमाते हैं और फेंक देते हैं, और उसकी मृत्यु हो जाती है। श्री बलराम जी की जय। और वो जानबूझ के उसको एक ऊंचे पेड़ के ऊपर फेंकते हैं, जिससे जब वो पेड़ से स्पर्श होगा तो बहुत सारे फल गिर जाएंगे, मरते मरते भी थोड़ी सेवा करते हो जाएगा। अज्ञात सुकृति, और उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर कृष्ण और बलराम दोनों मिलके, क्योंकि बाकी सब गधे आक्रमण करते हैं, हमारे प्रिय गधे मर गए तो इसलिए बाकी सब गधे भी एक एक करके आते हैं, और कृष्ण बलराम एक एक करके सबको पकड़ के फेंकते हैं। चलो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं, बिकेम अ वेरी पेनारोमिक सीन, बहुत सुंदर दृश्य, कोई सफ़ेद गधे, कोई काले गधे, कोई ग्रे गधे, कोई गधे गधे, और सारे गधों का खून भी वहाँ मिला हुआ था, एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग जैसे बना हुआ था। अब और से आसपास के लोग आते हैं फल खाने के लिए, लेकिन कृष्ण बलराम और मित्र नहीं खाते, इसलिए जो गिरे हुए फल नहीं खाते, क्योंकि सोचते हैं ये सब फल जो है धेनुकासुर के खून से लगे हुए हैं, इसलिए फिर वो फल नहीं खाते। कृष्ण का उद्देश्य है उनको मारना। धेनुकासुर प्रतिनिधित्व करता है हमारे हृदय की लोभ को, ये जो गधे जैसी प्रवृत्ति है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, डिग्रीज और चाहिए, कोई बीए बनता है यानी घोड़े की तरह, फिर एमए यानी ऊंट की तरह, और पीएचडी यानी गधे की तरह, और भी ज़्यादा मुझे और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए, और ये नहीं पता चलता कि मैं कौन हूँ। आप इतने ज्ञान प्राप्त किए, इतने डिग्रीज हैं, लेकिन आपसे पूछे कि आप कौन हैं, आपको तो मालूम है लेकिन अभक्त को मालूम नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये धेनुकासुर की प्रवृत्ति है, बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना। भगवान बलराम जी से आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय के जो धीनाकसुर जैसी प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाए। प्रश्न ये उठता है कि भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं मारा धीनाकसुर को, बलराम जी को क्यों मारने के लिए कहा, बाकी सब असुरों को कृष्ण ने मारा, सिर्फ धीनाकसुर और प्रलंबासुर और रुक्मी इसको भगवान कृष्ण ने मारा। धीनाकसुर इसलिए, धीनाकसुर बलि महाराज के परिवार का था। वामन देव ने वचन दिया था बलि महाराज को कि आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं मारूंगा। तो भगवान नहीं मारेंगे मतलब कि भाई मार देंगे। कृष्ण बहुत चालाक है। ऐसे ही उन्होंने बाद में रुक्मी को भी मारा। रुक्मी को मारा कैसे, खुद से नहीं मारा, बलराम जी के द्वारा, वो लास्ट में बताऊंगा लीला। क्यों, क्योंकि उनकी पत्नी रुक्मी नहीं है और रुक्मी उनका भाई है। अगर खुद रुक्मी को मारेंगे तो पत्नी नाराज हो जाएगी, जीवन मुश्किल हो जाएगा। वैसे मुश्किल रहता ही है लेकिन सुना है। अफकोर्स कृष्ण का जीवन दिव्य है। तो कृष्ण इसलिए रुक्मी को खुद नहीं मारते, रुक्मिणी के द्वारा मरवाते, सॉरी बलराम जी के द्वारा मरवाते। और मरने के बाद न तो खुशी दिखाते हैं न नाराजगी दिखाते हैं, क्योंकि खुशी होंगे तो रुक्मिणी नाराज हो जाएंगे और नाराज होंगे तो बलराम जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण परफेक्ट डिप्लोमेट भी है, 64 गुणों से भरे हुए। इस तरह कृष्ण धीनाकसुर को मारते हैं। फिर कृष्णा पुस्तक में बहुत सुंदर लीला है कि कैसे कृष्ण प्रलंबासुर का वध करते हैं। प्रलंबासुर बहुत होशियार होता है, वो ऐसा रूप धारण करके आता है एक सखा का, समझो कोई आश्रम में कोई चोर आ जाता है, वो भगवे कपड़े तिलक माला पहनी है, कंठी माला, तो पता नहीं चलेगा मंदिर में कोई आ जाए तो प्रलंबासुर ऐसे करता है। और उस सखा का वेश धारण करता है, रूप धारण, जो उस दिन कृष्ण के साथ नहीं आए हैं। सबको लगेगा कि यही हमारा मित्र है। तो कृष्ण बलराम तुरंत पहचान लेते हैं और मन में स्वागत करते हैं, ओ आओ आओ आपको मारेंगे, बोलते नहीं है लेकिन। तो दो पार्टीज बनाई जाती हैं, एक कृष्ण की पार्टी और एक बलराम जी की पार्टी। और ये निश्चय होता है कि जो पार्टी हार जाएगी वो जीते हुए को अपने कंधे पे ले जाएगी। तो इस गेम के दौरान खेलते खेलते कृष्ण की पार्टी हार जाती है और बलराम जी की पार्टी जीत जाती है। तो प्रलंबासुर जानबूझकर कृष्ण की पार्टी में रहते हैं, वो सोचते हैं कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, उनसे तो मैं नहीं लड़ सकता, बलराम जी से लड़ूंगा। उनको पता नहीं था बलराम जी का मतलब क्या है। तो बलराम जी को अपने कंधे पे ले जाते हैं और सोचते हैं इनको दूर ले जाकर वध करूंगा। धीरे धीरे उनको ले जा रहे होते हैं और थोड़े समय बाद बलराम जी देखते हैं तो बहुत ही दूर ले जा रहे हैं और अचानक देखते हैं कि उसने अपना असली रूप धारण कर लिया, बड़ा विशाल काला रूप। उसके बाद बलराम जी गोरे, ऐसे लग रहा है बादलों के बीच में चंद्रमा है, बहुत सुंदर बलराम जी, सुंदर। और तो सोचने लगे, अचानक थोड़ी देर के लिए वो डर गए, चिंतित हो गए कि ये मेरे कैरियर का साइज ना बदल गया है। क्या हो रहा है? अब प्रश्न ये उठता है कि बलराम जी कैसे मोहित हो गए। ये भगवान कृष्ण की योजना थी। कभी कभी ऐसे लगता है कि कृष्ण बलराम भी मोहित हो रहे हैं। और फिर बलराम जी समझ गए कि यह असुर है और जोर से उन्होंने उसके सिर के ऊपर घूसा मारा और उसका माथा जो है फट गया, पूरा उसके माथे से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिरकर मर गया। श्री बलराम जी की जय। इस तरह वृंदावन में बलराम जी ने ये दो असुरों का अंत किया। और उसके बाद भगवान कृष्ण जब भी द्वारका गए तो बलराम जी भी उनके साथ में थे, हमेशा उनके साथ में रहते। लेकिन बलराम जी को दुर्योधन से बहुत प्रेम था, पता नहीं क्यों। इधर बलराम जी का एक नाम है दुर्योधन गुरु, वो दुर्योधन को सिखाते थे कैसे गदा चलानी है, उस गधे को सिखाते थे कैसे गदा चलानी है। और वही स्किल को, वही कला को दुर्योधन ने भीम के विरुद्ध यूज किया आखिरी लड़ाई में, जो महाभारत का जो फाइनल आखिरी आखिरी लड़ाई थी। तो समझना मुश्किल है, लेकिन बलराम जी भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें दोष नहीं देखा जा सकता। इनफैक्ट कृष्ण बलराम की बहन का नाम था सुभद्रा, और जब सुभद्रा के विवाह का समय आया तो बलराम जी बोले कि इनका विवाह करना चाहिए दुर्योधन के साथ। ऑब्वियसली कृष्ण को आइडिया पसंद नहीं था, कृष्ण बहुत होशियार है। अगर वो बोलेंगे कि मैं इसका विवाह अर्जुन के साथ कराना चाहता हूँ वो बोलेंगे मैं दुर्योधन से कराना चाहता हूँ, तो आपस में झगड़ा होगा। भगवान कृष्ण ने एक योजना बनाई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप छिपके आओ, एक छिपके एक सन्यासी के रूप में आओ। और अर्जुन छिपके आए घर में, और फिर भगवान कृष्ण ने बोला कि आप दोनों यहाँ से भाग जाओ। तो सुभद्रा रथ पे सवार होकर अर्जुन को ले गए, और दुर्योधन बलराम जी को पता चला तो उसने, अरे ये क्या हो गया, मेरा जो आइडिया था वो फेल हो रहा है। तो इन्होंने तुरंत गुस्से में आकर अर्जुन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। भगवान कृष्ण बोले, देखो देखो रथ की डोरी किसके हाथ में है, देखा वो सुभद्रा के हाथ में। बोल दाऊ जी महाराज की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। इनफैक्ट बलराम जी पूरी यात्रा के दौरान, जब वो तीर्थ यात्रा में जाते हैं सब जगह जाते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं जाते, वो सेतु बन जाते हैं रामेश्वर और कन्याकुमारी और सब स्थान पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण, लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं जाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अपने आप की पूजा कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरा ही रूप है वहाँ पर। एक और सुंदर लीला है, जब जब महाभारत की लड़ाई शुरू होती है, दुर्योधन का बलराम जी का स्वाभाविक प्रेम होता है दुर्योधन के प्रति, लेकिन वो जानते हैं कि कृष्ण जो है वो पांडवों के प्रति है। अभी मैं यहाँ रहूँगा तो बहुत समस्या होगी, यू नो कृष्ण इस तरफ और बलराम इस तरफ, वो भी ये कोई खेल नहीं है, ये तो फाइनल फाइनल है, फाइनल फाइनल। इसलिए बलराम जी सोचते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए, कोई अगर समस्या हो रही हो तो ये अच्छा सोल्यूशन है। बलराम जी बोलते हैं ना, मैं ये पार्टी है वो पार्टी, वो तीर्थ यात्रा के निकल जाते हैं। और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया गया है उनकी यात्राओं का। बलराम जी सब जगह से भ्रमण करते करते वो एक स्थान पर पहुंचते हैं जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य वो स्थान है जहां पर प्राचीन समय सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत सुनाया था, और वो पहले से ही तीर्थ स्थान था, और ऋषि मुनि वहां एकत्रित होते थे यज्ञ करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो बलराम जी आए, उस समय रो महर्षि सूत ये व्यासदेव के शिष्य थे और वो प्रवचन कर रहे थे, और हजारों ऋषि मुनि थे, और बलराम जी आए वहां सामने से तो सब खड़े हो गए। अभी वेरी कैटिकेट है, समझो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे से कोई सीनियर भक्त आए, मेरे गुरु आए या मेरे गुरु के गुरु भाई आए, तो मेरे को तुरंत खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और बाद में अगर वो बोले तो मुझे आगे प्रवचन देना चाहिए, ये वैष्णव एटिकेट है। लेकिन रो महर्षि सूत सोच रहे थे, मुझे उठने की जरूरत नहीं है, मैं भागवत पर प्रवचन कर रहा हूँ, मुझे क्यों उठने की जरूरत है। वो बैठे रहे वहीं पर, और तो बलराम जी को बहुत क्रोध आया, वो सोचने लगे कि ये रो महर्षि सूत ये जाति से भी निम्न है और इसका चरित्र भी निम्न है, ये मेरे को देखने के बाद भी खड़ा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है, इसको सजा दी जानी चाहिए। तब उन्होंने कुछ सोच के एक छोटा सा घास का तिनका लिया और धीरे से स्पर्श किया उसके सिर के ऊपर, जैसे ही स्पर्श किया रोमर्षि सूत की मृत्यु हो गई। श्री बलराम जी की जय। बलराम जी को हर समय गदा यूज करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो स्पर्श से ही किसी के मृत्यु का कारण बन सकते हैं। और जैसे सब लोग जो ब्राह्मण बैठे थे, सबने जो प्रवचन सुन रहे थे वो आश्चर्यचकित हो गए, अरे हमारे स्पीकर को मार दिया अब। मैं बैठा हूँ और कोई आता है और ठू खत्म। मैं आशा करता हूँ कि नहीं हो, एटलीस्ट प्रवचन के एंड। तो रोमर्षि सूत जो है उसकी मृत्यु के बाद सब लोग बोले, बलराम जी आपने ये क्या कर दिया, हमने इसको आशीर्वाद दिया था लंबी आयु का और इसको यहाँ पर प्रवचन के लिए बिठाया था, अब क्या होगा हमारे हमारे प्रवचन का क्या होगा। तब बलराम जी बोले कि आप जो बोले मैं करने को तैयार हूं, आप बोले तो मैं इसको पुनर्जीवित भी कर सकता हूं, और आप बोलो तो मैं कुछ प्रयाश्चित भी करने को तैयार हूं। तब कुछ सोचने के बाद वे सब कहने लगे कि आप अगर इनको जीवित कर दोगे हमें उससे प्रसन्नता नहीं होगी, ऐसा कुछ करना चाहिए जिसे जीवित भी नहीं किया जाए और उसकी मृत्यु भी नहीं हो। ऐसा कहा जाता है कि पिता जो है वो पुत्र से जीवित रहता है, इनके एक पुत्र हैं रोमहर्षण सूत के, जिसका नाम है उग्रश्रेव सूत। तो हमारी ये इच्छा है कि आप जो लंबी आयु का वरदान जो रोमहर्षण सूत को था वो आप उनके पुत्र को सौंप दो। और इस तरह से बलराम जी जो है वो उनको लंबी आयु का वरदान देते हैं और साथ साथ ब्राह्मणों से पूछते हैं कि मैंने गलती की है, ऋषि को मारा है, अब आप जो कहें वो मैं करने को तैयार हूँ। तब सब उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पर एक बहुत भयंकर राक्षस आता है, उसका नाम है बलवल, उसके पिताजी का नाम है इलवल, ये वलव फैमिली है, यू नो जैसे महाराष्ट्र में कर होता है ना, ये इलवल बलवल, और ये बहुत गंदा है, लोग यज्ञ कर रहे होते हैं रात के समय, वो आकर मल मूत्र फेंकता है और हड्डियां फेंकता है और आप उसको मार दो। ये एक पहला प्रयाश्चित है। उसके बाद आप तीर्थ यात्रा पे जाओ 12 महीने के लिए और आप सारे कलमश जो पाप है उससे मुक्त हो जाओगे। बलराम जी के लिए कोई पाप नहीं है, बलराम जी का नाम लेते ही सब लोग शुद्ध हो जाते हैं। जैसे हम हरे राम बोलते हैं, राम का मतलब बलराम भी है, तो जब हम सच्चे दिल से पुकारते हैं हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे, हम सच्चे दिल से जब बलराम जी को पुकारते हैं तो बलराम जी हमारे पापों से मुक्त कर देते हैं। लेकिन फिर भी बलराम जी दिखाना चाहते थे कि एक व्यक्ति को कैसे आदर्श जीवन बिताना चाहिए, इसीलिए वो तैयार हो गए तीर्थ यात्रा के लिए। सबसे पहले वो बलवलों को मारना चाहते थे। तो शाम का समय आया जब सूर्यास्त हो गया और सारा आकाश धूप से ढका था और उस समय गंदी बदबू आ रही थी और बलवला ऊपर से सब गंदी चीजें फेंकने लगा और देखा बलराम जी ने उसको, इतना विशाल रूप, प्रभुपाद जी बोलते हैं ह्यूज मास ऑफ कार्बन, बड़ा कोयले का टुकड़ा जैसे, इतना बड़ा, इतना काला कलूटा, उसकी लाल रंग की दाढ़ी तांबे की तरह, उसका मुंह भी खतरनाक, उसकी आंखें खतरनाक। और बलराम जी इसको आक्रमण करने के लिए आए और उन्होंने अपना हल और अपना गदा दोनों हाथ में लिया, क्योंकि ऊपर आकाश में उड़ रहा था, तो अपने हल से उसको पहले नीचे खींच लिया और फिर उसके सिर के ऊपर और जैसे ही उसको एक प्रहार मिला उसके माथे से खून बहने लगा, बेचारा जोर से, बेचारा नहीं भाग्यवान जोर से चिल्लाने लगा और जमीन पर गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। श्री भगवान बलराम जी की। वेदव्यास जी सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोलते हैं, ऐसा लग रहा था सुंदर जैसे एक विशाल पर्वत पे कोई लाल रेड ऑक्साइड कोई चीज बह रही हो, वेरी पेनोरमिक सीन, उसके लिए सुंदर नहीं था लेकिन बाकी लोग को अच्छा लग रहा था। ये भगवान का कार्य, यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम्, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों को मारने के लिए। तब फिर बलराम जी फिर से तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े ब्राह्मणों की अनुमति लेकर। वो सरयू नदी के पास गए जहाँ लक्ष्मण के रूप में वो रहते थे, अयोध्या में सरयू नदी। उसके बाद वो गंडकी नदी में गए जो नेपाल में है। उसके बाद वो गया गए, अब गए कभी गया, ये तीर्थ स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु भी गए थे। वहाँ पर बहुत सुंदर भगवान विष्णु के चरण कमलों का मंदिर है और उस तीर्थ में जाकर भगवान का स्मरण करने से बहुत लाभ हो। तो वहां पर जाते हैं लोग पितृ के लिए पिंड दान करने के लिए। तो बलराम जी क्यों वहां पर गए, उनके पिताजी जीवित थे, उनके दादाजी भी जीवित थे, उनके पिताजी वसुदेव थे, वसुदेव के पिता भी जीवित थे। उनके पिता ने उनको आज्ञा दी थी कि हमारे पूर्वजों के लिए जाकर आप पिंड दान करो, इसलिए बलराम जी वहां पर गए। फिर गंगोत्री गए जहाँ गंगा प्रकट होती है हिमालय में, और फिर बंगाल में जहाँ गंगा सागर से मिलती है उस स्थान को कहते हैं गंगा सागर, वहां पर गए। इस तरह भ्रमण करते करते महेंद्र पर्वत गए, महेंद्र पर्वत में परशुराम जी से मिले, परशुराम जी हमेशा हर युगों में रहते हैं, उनसे मिले। फिर द्राविड़ देश गए और सारे जगह भ्रमण करते करते श्रीरंगम पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने कावेरी नदी में स्नान किया, मले पर्वत में गए, ताम्रपाणी नदी में स्नान किया, गोकर्ण गए। आपने किसी ने देखा है गोकर्ण है, बहुत सुंदर स्थान जो कि उडुपी के पास में है, उडुपी के रास्ते पर। इस तरह भ्रमण करते करते अंत में वो पहुंच गए कुरुक्षेत्र। किसी ने उनको बताया कि अब कुरुक्षेत्र की लड़ाई अंत हो रही है, अधिकांश क्षत्रिय नष्ट हो गए हैं। और बलराम जी को खुशी हुई कि धरती का बोझ कम हो गया है। और वो जब पहुंचे तो उस समय लड़ाई का 18वां दिन था, टूर्नामेंट का फाइनल मैच थी। उसी भीम अपने प्रिय मित्र दुर्योधन से लड़ रहे थे, क्योंकि आखिरी दिन एक्चुअली 5 पांडव बचे थे और भीम अकेले, 5 पांडव थे, दुर्योधन अकेले। लेकिन युधिष्ठिर इतने उदार थे, उन्होंने कहा दुर्योधन से कि आप हमारे में से किसी एक से लड़ लो, अगर आप विजयी हो जाएंगे तो हम आपको राज्य दे देंगे। और दुर्योधन ने अपने प्रिय मित्र भीम को चुना कि शुरू से शत्रुता थी। और आप जानते हैं कि कैसे, जब अगले दिन लड़ाई होनी थी तो गांधारी ने बताया भीम को, दुर्योधन को, कि आप मेरे पास रात को आना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी है इतने सालों से। जिनको पता चला कि मेरे पति अंधे हैं तो उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी थी। तो गांधारी कहने लगी कि अगर आप आओगे और मैं अपनी आंखों को खोलूंगी तो जहां मैं दृष्टि डालूंगी वो स्थान वज्र के समान बन जाएगा, और आप बिना कपड़े के आना, जिससे आपका पूरा शरीर वज्र हो। तो दुर्योधन जा रहे थे रात के समय, रास्ते में कौन मिल गए? कुंज बिहारी गोपीनाथ कृष्ण। सब प्रॉब्लम्स करते हैं असुरों के लिए और भक्तों के लिए हेल्प करते हैं, भक्तवत्सल। भगवान कृष्ण बोले, अरे भीम, सॉरी दुर्योधन, अब कहाँ जा रहे हो? बोले अपनी माता से मिलने। बोले ऐसे नहीं, माता के पास जा, नहीं नहीं, कम से कम एक वस्त्र पहन लो। तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की सलाह सुन ली। और गांधारी जब आंख खुली तो बोले, अरे ऐसे क्यों? तो बोले कृष्ण मिल गए थे, बहुत पूरा प्लान विफल हो गया। उन्होंने शाप दे दिया गांधारी ने कि कृष्ण, आपने मेरे वंश का नाश कराया है, आपके भी वंश का नाश ऐसे ही हो जाए आपस में युद्ध से। ऑफकोर्स वो शाप देने की शक्ति भी कृष्ण ने ही दी थी, क्योंकि कृष्ण वो शो को एंड करना चाहते थे, तो कृष्ण का प्लान। अब तो महाभारत की लड़ाई शुरू हुई अगले दिन, और दुर्योधन और भीम दोनों लड़ रहे थे, दोनों कोई विजय नहीं हो रहा था। और उस समय एक बलराम जी वहां पर आ गए। बलराम जी को देखकर भीम, सॉरी युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव थोड़ा सा डर गए, क्योंकि सोच रहे थे कि बलराम जी अपना प्रेम नहीं दिखाएं दुर्योधन के प्रति, पूरा सब हमारी लड़ाई में सब समस्या आ जाएगी। तब उस समय बलराम जी बोलने लगे, हे दुर्योधन, हे भीम, आप दोनों मेरी बात सुनो, तुम दोनों महान हो, तुम दोनों महान योद्धा हो, लेकिन आप में से एक शारीरिक शक्ति में बड़ा है और दूसरा गदा की कला में बड़ा है। भीमसेन शारीरिक शक्ति में बड़े थे और दुर्योधन गदा युद्ध में, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप दोनों समझौता कर लो, न तो कोई जीतने वाला है न कोई हारने वाला है, इसलिए युद्ध रोक दो। लेकिन भीम और दुर्योधन इतने एक दूसरे के प्रति, इतना उनका क्रोध था, इतनी शत्रुता की भावना थी, और जानते हैं क्षत्रिय जब कोई खून आने लगता है तो उनकी उत्साह बढ़ता है, जैसे एपिटाइट आता है फ्लेवर से ना, तो उनको कहते हैं अभी और लड़ना चाहिए, चाहे अपने शरीर से भी क्यों ना हो, क्षत्रिय का मतलब उसको आनंद मिलता है लड़ने से। तो इस तरह से वो दोनों लड़ते रहते हैं, और अंत में आप जानते हैं कैसे भगवान कृष्ण इशारा करते हैं भीम को कि आप उनके कमर के नीचे प्रहार करो, क्योंकि वहाँ पर जो है उन्होंने कपड़ा पहना हुआ था, वहाँ पर ही अगर आप प्रहार करोगे तो उसकी अंत हो जाएगा। और लड़ाई करते करते एक बार भीमसेन को कमर के नीचे प्रहार, जो युद्ध के नियम से खिलाफ होता है, लेकिन यह पूरा युद्ध ही नियम के विरुद्ध हो रहा था, इसलिए तो भगवान कृष्ण की आज्ञा से प्रहार करते हैं और दुर्योधन वहीं पर घायल हो जाते हैं। बलराम जी आकर पहले जब ये देखते हैं तो बलराम जी काफ़ी क्रोधित होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उनको शांत कर देते हैं और निकल पड़ते हैं। तो इस तरह से ये कुछ लीलाएं हैं बलराम जी के। इसके बाद और एक सुंदर लीला है जो कि दिखाती है कि कैसे भक्त को, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो भेद नहीं करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी एक कहानी है कि एक भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु का बड़ा आदर करते थे और नित्यानंद प्रभु का नहीं करते थे, और इसलिए उनका पतन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एक भक्त थे जिनका नाम था द्विविद। आपने रामायण में सुग्रीव का नाम सुना होगा। द्विविद जो है वो सुग्रीव के मित्र थे, मिनिस्टर थे, और भगवान रामचंद्र जी के बहुत आदर देते थे, लेकिन लक्ष्मण को आदर नहीं देते थे, लक्ष्मण के प्रति अपराध कर रहे थे। तो उस समय तो उनको कोई फल नहीं मिला। उस समय भगवान राम के साथ थे, लंका में पूरी लड़ाई में विजयी हो गए, बड़े खुशी खुशी लौट गए, लेकिन वो जो उन्होंने अपराध किया था उसका फल उनको द्वापर युग में मिला। जब कोई व्यक्ति भगवान या भक्त के प्रति अपराध करता है तो उसका सत्संग का अवसर चला जाता है। द्विविध सब वैष्णव का संग छोड़कर भौमासुर का संग करने लगे और उनके संग के प्रभाव से उनका चरित्र का पतन हो गया और वो बहुत तकलीफ देने लगे। जब उनको मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण ने मेरे प्रिय मित्र भौमासुर का अंत कर दिया है, तो भगवान कृष्ण पर आक्रमण करने आए, गांवों में आग लगाने लगे, शहरों में, और कभी कभी बड़ा पर्वत उठा लेते, उसको टुकड़े टुकड़े कर देते, और अंत में वो द्वारका के पास पहुंचे समुद्र में। वो इतने शक्तिशाली थे कि वो समुद्र में जाते और जोर जोर से पानी में हाथ चलाने लगते और उनके हाथ चलाने से सारी जगह पे बाढ़ आ जाती। अच्छा वो अभी यहां पर नहीं है, नहीं पहले। बहुत क्रूर व्यक्ति थे, ऋषि मुनियों के पास जाकर तपस्या देते, उनके बगीचे को तोड़ देते, और इस तरह से जब वो बहुत बुरे कार्य कर रहे थे। और एक बार उन्होंने देखा कि बलराम जी कुछ लीला कर रहे हैं उनके अपने खुद के पत्नियों के साथ, और बलराम जी उस समय मग्न थे उसमें। तो ये जो द्विविध गोरिला था वो पेड़ों के ऊपर चढ़कर उनको तकलीफ देने लगा और गंदी चीजें फेंकने लगा, बुरे शब्द बोलने लगा और कीला कीला आवाज करने लगा। जब बलराम जी ने देखा कि असुर, इसको सजा दी जानी चाहिए, बलराम जी उस पर आक्रमण करने के लिए आए और द्विविध के ऊपर उन्होंने एक जोर से एक पत्थर फेंका। बहुत बड़ा वानर था, गोरिल्ला जैसे, लेकिन बहुत शक्तिशाली। जब बलराम जी ने वो पत्थर फेंका तो उसने अपने आप को बचा लिया और जो वारुणी जो बलराम जी पी रहे थे वो बलराम जी के हाथ से छीन ली, और वो और भी आक्रमण करने आया, बलराम जी के वस्त्र फाड़ने लगा। तब अंत में बलराम जी ने बहुत क्रोध दिखाया, अपनी गदा को हाथ में लिया और जोर से उन पर आक्रमण करने के गए। लेकिन उस समय उस वानर ने एक बड़ा विशाल वृक्ष लिया और वृक्ष सब झाड़ियों को पत्तियों को तोड़ के बलराम जी के ऊपर फेंक दिया। बलराम जी ने अपने बाएं हाथ में उसको पकड़ लिया और पराजित नहीं हुए और अपनी गदा से जोर से प्रहार किया, उसके सिर के ऊपर खून बहने लगा। लेकिन इसके बावजूद वह असुर की शक्ति और बढ़ने लगी क्योंकि बहुत दृढ़ निश्चय था। अंत में बहुत सारे पेड़ लेकर बलराम जी पे फेंकने लगा और बलराम जी सब पेड़ को पकड़ लेते, धीरे धीरे इतने पेड़ फेंके कि जंगल में कोई पेड़ ही नहीं रहा, वह स्थान बिल्कुल वृक्षों से शून्य हो गया। तब वो हाथ से आकर फिर पत्थरों फेंकने लगा, फिर पत्थर खत्म हो गए, फिर वो घूसे से मारने लगा जोर जोर से, और बलराम जी के हाथ में गदा थी। बलराम जी सोच रहे थे कि युद्ध के नियम के अनुसार अगर सामने वाले व्यक्ति के पास गदा है तो गदा उपयोग करनी चाहिए, नहीं तो गदा नहीं उपयोग करनी चाहिए। इसलिए बलराम जी बहुत क्रोध में थे और अपनी जोर से अपने मुक्के से उसके जो पीछे कॉलर बोन होते उसके ऊपर प्रहार किया। वो इतने जोर से था कि द्विविध के खून के शरीर से खून निकलने लगा, जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। श्री बलराम जी की जय। और ऊपर से सिद्ध और देवता जय जयकार करने लगे कि आपने द्विविध का अंत कर दिया और इस तरह से सब कुछ मंगलमय हो गया है, सब जगह विजय की भावना होने लगी और बलराम जी वापस लौट कर आ गए। एक और बहुत सुंदर कहानी है जो दिखाती है कि कैसे हमें बलराम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये उस समय की है जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, सारे ब्रजवासियों को बहुत दुख हो रहा था। तो भगवान ने एक बार उद्धव जी को भेजा और एक बार बलराम जी को भेजा कि जाओ मेरे सब प्रिय गोपियों को, ग्वाल बालों को, नंद को, यशोदा को सांत्वना दो। और उस समय जब बलराम जी वहां पर आए, सबसे मिले, सबको सांत्वना दिया और उनकी इच्छा हुई, गोपियों के साथ वो नृत्य कर रहे थे, उनकी इच्छा हुई कि मैं यमुना में प्रवेश करना चाहता हूं। और आप जानते हैं बलराम जी यानी भगवान है, उनकी उनको पूरा अधिकार है आज्ञा देने का। तो यमुना से कहा कि आप यहां पर आओ, लेकिन यमुना सोचने लगी कि बलराम जी नशे में, उनकी बात सुननी जरूरी नहीं है। यदि जानना चाहिए कि बलराम जी का नशा जो है वो साधारण नशा नहीं है, वो दिव्य नशा है, वो एक ट्रांसेंडेंटल नशा है, इस भौतिक दुनिया का नहीं है। तो इसलिए बलराम जी के प्रति यमुना मैया जो है वो उनकी आज्ञा को नहीं स्वीकार करते। बलराम जी को बड़ा क्रोध आ जाता है। उनके पास दो अस्त्र हैं, एक उनका हल और एक उनकी गदा। तब यमुना देवी से क्रोधित होकर बोले कि हे यमुना, तुम बहुत दुष्ट नदी हो, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। ऐसा कहकर उन्हें अपना हल यमुना के पानी में प्रहार किया, उसके सैकड़ों शाखाएं हो गई। यमुना देवी साक्षात हाथ जोड़कर फूलों की माला ले आकर कहने लगी, हे बलराम जी, आप सर्वशक्तिशाली हो, सबको प्रसन्नता देने वाले हो, मैं भूल गई थी कि आप कौन हो, और मैं आपसे माफी मांगती हूं। आप ही आपके विस्तारित स्वरूप के विस्तारित स्वरूप अनंत शेष हैं, आप सारे ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हो, आप सब ऐश्वर्य से पूर्ण हो, मैं आपके ऐश्वर्य को भूल गई थी, मैं अपराधी हूं, मेरे को माफ कर दो, मैं अपराधी, मैं आपकी शरण में आया। यमुना का अपराध क्षमा हो गया और बलराम जी फिर यमुना के जल में सुंदर लीला करने लगे। अभी भी आप जाओगे यमुना के कुछ भाग हैं जो जिसके जहाँ पर यमुना को अलग अलग धाराओं में विभाजित किया गया, इस लीला के स्मरण में अभी भी आप ये दृश्य को देख सकते हैं। एक बार जैसे कि आप जानते हैं कि बलराम जी का बहुत प्रेम था दुर्योधन के प्रति, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो दुष्ट व्यक्ति को अगर आप प्रेम दिखाओ, वो व्यक्ति उस प्रेम का जो महत्व है वह समझ नहीं पाता। तो ये एक लीला है जो बताती है। आप सब लोग जाग रहे हैं ना, सब लोग जोर से बोलिए हरी 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 हरी। बस अभी खाली दो असुरों का अंत बाकी है, अगर आप ऐसे सुने बिना चले गए तो फिर आपको रात को तकलीफ देंगे। जैसे जैसे हम कहानी सुनते हैं हमारे हृदय के असुर भी नष्ट होते जाते हैं, लेकिन इसको बार बार सुनना चाहिए, बार बार। प्रभुपाद जी ने पुस्तक दिया है, कृष्णा पुस्तक। प्रभुपाद जी बोलते थे, एनीबडी हु रीड्स दिस बुक रेगुलरली ही विल बिकम अ लवर ऑफ कृष्णा, वो कृष्ण का प्रेमी बन जाए। तो ये कहानी इस प्रकार की है कि दुर्योधन की एक लड़की होती है पुत्री, इसका नाम होता है लक्ष्मणा, और बहुत योग्य होती है और कुरु वंश के कई लोग उनसे विवाह करना चाहते हैं। तो स्वयंवर सेरेमनी होता है उस जमाने में, स्वयंवर यानी बहुत से राजकुमार आते और जिसका विवाह होना होता है वो चूज करते हैं कि किससे विवाह करना है। कृष्ण के एक पत्नी का नाम था जाम्बवती। कृष्ण के बहुत सारे पत्नी थी, 16,108, और हर एक से 10 पुत्र थे, यानी 1,60,000 सिर्फ उनके बच्चे थे। आप कोई कार्ड राशन कार्ड या कुछ बनाओगे 1,60,000 इमेजिन, और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, उसके अलावा और कई थे। तो कृष्ण के एक पुत्र थे, इसका नाम था सांब। सांब थोड़े ट्रांसेंडेंटल थे, दिव्य थे। सांब जब आए उस समय स्वयंवर में, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं लक्ष्मणा से विवाह करना चाहता। वो थोड़े थे, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, ही वॉज अ बैड चाइल्ड, खराब बच्चे थे, और माता के बहुत पास रहते थे, सांब कहा गया। तो एक दिन सांब जब ही आए तो उन्होंने सभा में लक्ष्मणा को उठाकर लेकर चले गए स्वयंवर में से। और जब कुरुवंशी ने देखा कि हमारे रहते हुए भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, अर्जुन भी बैठे हैं, दुर्योधन बैठे हैं, शकुनी, और सबको देखते हुए ये हरण हो गया, ये हमारे कुरुवंश के प्रति अपमान है, हम ये कभी नहीं सहन कर सकते, इनको सजा दी जानी चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने निश्चय किया कि हम इनको गिरफ्तार कर देंगे। तो सोच रहे थे कैसे इनको गिरफ्तार किया जाए। सोचने लगे कि अगर हम गिरफ्तार करेंगे तो यदुवंशी बहुत नाराज हो जाएंगे, लेकिन यदुवंशी क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो बड़े बड़े भीष्म जैसे महारथी हैं और कृष्ण बलराम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम आ जाएंगे तो हम बताएंगे उनको कि क्या कारण है, इस तरह सलाह कर छह बड़े बड़े महारथी, इसमें कर्ण, शल, भूरिश्रव, यज्ञ केतु, दुर्योधन, ये सब मिलकर सांबा से लड़ने के लिए आए। अलग अलग रथी होते हैं, एक रथी, महारथी, रथी और सांब, सब छह के साथ एक साथ लड़ रहे थे लेकिन सबको पराजित कर रहे थे। और इस तरह से चुनौती करते करते अंत में, वास्तव में सांब बहुत शक्तिशाली थे लेकिन सब छह ने मिलकर उसको धोखे से गिरफ्तार कर दिया और सांब और लक्ष्मणा को कुरु वंश में गिरफ्तार करके रख दिया, अपने जेल जैसे कमरे में डाल दिया। भगवान कृष्ण को पता नहीं था, जिनको सब कुछ पता है लेकिन पता नहीं था, नारद मुनि ट्रांसेंडेंटल वहां आए यदुवंश में और बोले, भगवान कृष्ण, बलराम आपको मालूम है कहाँ है आपके पुत्र, कहाँ है, आपको गिरफ्तार कर दिया गया, चलो इन पर आक्रमण किया जाए। अब बलराम जी समझ गए कि अभी दुर्योधन मेरे को बहुत प्रिय है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए बलराम जी ने बोला, एक बार रुक जाओ, आप दुर्योधन पर आक्रमण मत करो, मैं आगे जाऊंगा और मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा, शायद वो मेरी बात मान जाए और युद्ध से बच जाए। तो इसलिए पूरी सेना को लेकर गए लेकिन सेना को बाहर ही रखा और बलराम जी ने एक संदेश भेजा उद्धव जी के द्वारा, आप जाओ कुरुवंशियों को समझाओ कि इस तरीके से दुर्योधन से कहो कि सांब और लक्ष्मणा को बड़े अच्छी तरीके से वापस भेज दो। तो जो कुरुवंशी थे बहुत प्रसन्न हुए, उनको पता चला बलराम जी आए हैं, तो मिलने के लिए आए, वो खुद स्वागत करने आए, उनको आसन दिया, उनके चरणों को धोया, कई गाय दान भी दिए, उनके उनके फूल की माला पहनाई और सब करने के बाद तब बलराम जी ने संदेश दिया। वो कहने लगे कि हे मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं महाराज उग्रसेन यदुवंशियों के जो राजा हैं उनके संदेशवाहक के रूप में आया हूं, इस आज्ञा को ध्यान से सुनो। महाराज उग्रसेन जानते हैं कि आपने उनके परिवार के एक सदस्य सांब का हरण कर लिया है और बहुत गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, इसलिए हम दुखी नहीं है क्योंकि हम जानते हैं हमारा अच्छा संबंध है, इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप सांब और लक्ष्मणा को जल्दी से वापस कर दो, नहीं तो हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। जब बलराम जी बोल रहे थे उनकी वॉइस कमांडिंग थी, एकदम पावरफुल, ऐसे फुल ऑफ असर्शन, सुप्रीमेसी एंड शिवलरी, प्रभुपाद जी बोलते हैं, शिष्टता और बहादुरी के साथ। तब जब कुरुवंश के लोग बहुत एजिटेट हो गए, गुस्से में, प्रभुपाद जी बोलते हैं हेलो बोलते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हाँ बलराम जी हमको ऐसे बोल रहे हैं, ये भाषा जो है लगता है अब कलयुग शुरू हो गया है, अब जूते जो है सिर के ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं, ये यदुवंशी हमारे जूते के समान है और हमारा कुछ संबंध है इनके साथ और हम उनको अपने साथ बैठने का आसन देते हैं, खाने का अवसर देते हैं और एक गलत फायदा उठा रहे हैं, हमने इनको दया करके राज्य का एक छोटा सा हिस्सा दिया है और अब ये हमारा विरोध कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, हमें हम इनको आगे से राज्य नहीं देंगे, इनको बैठने के लिए बिस्तर नहीं देंगे। जैसे सांप को दूध पिलाने से लाभ नहीं मिलता, ऐसे यदुवंशियों को हम मदद नहीं करेंगे। कौन है इस दुनिया में अगर जो भीष्म, द्रोणाचार्य और अर्जुन का सामना कर सके, शेर के सामने जैसे गीदड़ नहीं ठहर सकता, ऐसे हमारे सामने तो स्वर्ग के राजा इंद्र भी कुछ नहीं देख सकते, और फिर ये बलराम और कृष्ण का तो कहना ही क्या। तो बलराम जी सुन रहे थे खाली, वो इंतजार कर रहे थे कब बंद होगा प्रवचन, जैसे आप लोग भी कर रहे हैं अभी तो बहुत गुस्से हुए, इतने गुस्से हुए बताया गया, उनकी आंखें ऐसे लग रहे थे कोयले के समान लाल हो गए और इतने गुस्से थे कि किसी की हिम्मत नहीं उनकी ओर देखने की भी, और गुस्से में आकर बोले, सही है दुर्योधन, सही है, अपने परिवार और ऐश्वर्य से व्यक्ति शांत जीवन को भूल जाता है और क्रोधित हो जाता है, ये जान लो कि तुम जानवर हो, जानवर, जानवर के साथ बातचीत से बात नहीं किया जा सकता, उसको मारना ही पड़ता है, इसलिए अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, मेरे को सब यदुवंशी मिलकर बोल रहे थे आक्रमण करने के लिए लेकिन मैंने सोचा कि आपको शांति से समझौता किया जा सकता है, लेकिन आज तुमने यदुवंशी के विरुद्ध ऐसे शब्द बोले हैं, तुम जानते नहीं हो इंद्र वो भी महाराज उग्रसेन के आदर देते हैं, यदुवंशी इतने महान है कि पारिजात फूल और सुधर्मा सभा जो स्वर्ग में रहती है उसको भी धरती पर ले आया, और तो और कृष्ण स्वयं भगवान है, जिनकी सेवा ब्रह्मा जी और शिव जी करते हैं उनके बारे में तुम ये शब्द बोल रहे हो और कह रहे हैं कि तुमको छत्र और चमर उपयोग करने का अधिकार नहीं है, तुम कृष्ण के ऐसा अपमान कर रहे हो, दुर्भाग्य की बात है। और हमको तुम जूते के समान समझ रहे हो और अपने आप को महान समझ रहे हो। और बलराम जी बोले, मैं अभी सिखाता हूं, आज मैं ऐसी सजा दूंगा जो इतिहास में पता चलेगा, आज इस दुनिया में कुरु वंश का नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसा कहकर बलराम जी ने क्रोध में आकर अपनी शक्ति से हल से पूरे हस्तिनापुर को उठा दिया, जैसे बुलडोजर बोलते हैं ना, जैसे बलराम जी हो तो मतलब सीधा ही पूरा सिटी डोजर पूरा उठा दिया। और गंगा जी भी बहाने लगे और सब घबरा गए, कुरुवंशी देख रहे हैं ये ना, अभी लातूर में कुछ 10 साल पहले भूकंप आया था, थोड़ा हम घबरा गए थे, मुंबई में थोड़ा सा पानी आया तो लोग यू नो, लेकिन सोचे बलराम जी क्या कर सकते, बलराम जी को देखकर सब लोग घबरा गए, सब भागते हुए सब लोग, कुरुवंशी अर्जुन भी और युधिष्ठिर भी और दुर्योधन भी सब, और सबसे आगे लेके आए सांब और लक्ष्मणा को, ये आपके हैं ये आपके हैं। हाथ जोड़ के बोले, भगवान हम आपकी शक्ति को नहीं जानते थे, हमें क्षमा कर दो, हम मूर्ख हैं, हमारे अपराध को माफ कर दो, आप ही सृष्टि की रचना करने वाले हो, आप ही पालन करने वाले हो, आप ही नाश करने वाले हो, आप कठपुतली के नचाने वाले हो, हम आपके कठपुतली है, मतलब हमने जो गलती की वो भी आपसे ही आ रही है आप हमारे अपराध को माफ कर दो भगवान, इस तरह से कहने लगे। और फिर बड़े खुशी के साथ सांब और लक्ष्मणा का विवाह हुआ और दुर्योधन ने बहुत सारा दहेज भी भेजा, 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, 6,000 रथ, 1,000 दासियां। और बलराम जी बड़े खुश हो गए। एक लास्ट मैं एक लीला बता के अंत करूंगा, ये बहुत सुंदर है। आप जानते हैं कि कृष्ण द्वारका में थे तो समय कौंडिन्यपुर से एक संदेशवाहक आया ब्राह्मण रुक्मिणी का पत्र लेकर कि आप आओ, जल्दी आओ और मेरा हरण करो, मेरे भाई रुक्मिणी मेरा विवाह शिशुपाल के कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि गीदड़ शेर का शिकार लेकर चला जाए। तो भगवान कृष्ण तुरंत रथ पर आए और रुक्मिणी का हरण किया, उस दौरान कई राजकुमारों को मारा और रुक्मिणी को भी गिरफ्तार कर दिया गया। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि रुक्मिणी का भाई है, अगर मैं इसको मार डालूंगा तो वो नाराज हो जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया, इसलिए भगवान ने उनको कुछ किया नहीं, खाली बाल रखे हैं, कुछ थोड़े से बाल रखे उनके, बीच बीच में से शेव कर दिया इसे और उनको छोड़ दिया। तो रुक्मिणी बहुत नाराज हो गए, उनके मन में बदला की भावना थी बहुत, और लेकिन फिर भी रुक्मिणी के जो कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न और रुक्मिणी की जो लड़की थी उसके साथ उन्होंने विवाह करवाया। जनरली ये मैरिजेस ऐसे फैमिली में नहीं होते, लेकिन रुक्मिणी की इच्छा थी कि मैं अपनी बहन को प्रसन्न करना चाहता हूँ। कृष्ण को रुक्मिणी पसंद नहीं थे और रुक्मिणी को कृष्ण पसंद नहीं थे, लेकिन रुक्मिणी बीच में थी दोनों के, मतलब एक की बहन थी और एक की पत्नी थी, इसलिए दोनों थोड़ा क्लोज रह रहे थे। तो विवाह हो गया। उसके बाद कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध थे, वो भी रुक्मिणी के पुत्र की पुत्री से विवाह कराते हैं। और इस अभी ये कृष्ण के पुत्र का विवाह रुक्मिणी के पुत्री के सॉरी पुत्र के पुत्री के साथ है, तो नेचुरली सब आएंगे विवाह में, तो सब आए होते हैं। और विवाह के बाद रुक्मिणी सोचते हैं मैं बलराम जी से बदला लेना चाहता हूँ, सोचते हैं बलराम जी से मैं वैसे तो नहीं जीत सकता, बलराम जी ने पहले हमको दिखा दी अपने ऐश्वर्य, इसलिए मैं डाइस क्या बोलते उसका जुआ के पासा मैं पासा खेलूंगा और उनको पराजित करूंगा। तो बैठे हुए थे और उनके साथ उनके एक मित्र थे जो कलिंग देश के राजा थे, उनके दांत बड़े भयंकर थे मतलब वो सोचते थे अच्छे हैं, लेकिन तो जब उन्होंने पासा फेंका 100 सोने के सिक्के, ये बैट हुआ 100 सोने के सिक्के, और कलिंग वो रुक्मिणी जीत गया और वो बड़े खुशी बोले देखो मैं जीत गया। अब बलराम जी को बोलने लगे, बलराम जी आप क्या समझते हो, ग्वाले और ग्वाले ये ग्वालों के लिए जगह नहीं है, तीर चलाना पासा फेलना ये सब क्षत्रियों का काम होता है, चले जाओ। तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आया, बोले ठीक है अभी 1,000 सोने के सिक्के। और इस बार बलराम जी जीत गए, लेकिन रुक्मिणी बोला नहीं मैं जीता, उसके कुछ चमचे या जो भी बोलते हैं उसको आसपास से बोले हाँ ये जीते ये जीते। फिर अगली बार फिर से 10,000 और फिर 1,00,000। जब 1,00,000 सोने के मुद्रे डाले तो बलराम जी जीत गए और आकाशवाणी हुई बलराम जी जीते हैं। लेकिन रुक्मी बोला नहीं मैं जीता। और एक कलिंग देश के जो राजा थे वो बीबी ने अपना दान दिखा देते। अभी आप हंस रहे हो लेकिन होपफुली आप बलराम जी के साइड में हो। अगर आप में से कोई रुक्मी के साइड है तो क्या होगा बाद में बताऊंगा। तो बलराम जी ने देखा कि ये अब सुनने वाला नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मारते। तो अपनी जोर से गदा ली और एक ही बार मारा और रुक्मी का सिर में पूरा, रूपा जी बोलते हैं उसका पूरा हेड क्रैक हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया और प्रश्न ही नहीं उठता उसके जीवित रहने का। श्री बलराम जी की जय। और फिर बलराम जी देखने लगे उस कलिंग देश का, अभी वो हंस नहीं रहा था। वो गए और गुस्से के साथ एक ही गुस्से में इतने जोर से मारा कि उसके सारे 32 या 33 जितने भी थे सारे दांत तोड़ दिए। और वो बेचारा अपने बिना हंसे वो चला गया। इस तरह से बलराम जी विशेष कृपा करते हैं। लेकिन अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण ये सब देख रहे थे लेकिन कृष्ण ने दुख प्रकट नहीं किया और खुशी भी नहीं प्रकट की। कृष्ण अगर दुख प्रकट करते तो बलराम जी नाराज हो जाते, अरे मैंने मारा और आप दुखी हो रहे हो। और अगर वो खुशी प्रकट करते तो रुक्मिणी नाराज हो जाते, जैसे मैंने पहले बताया। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कुछ बोले नहीं। और अंत में बलराम जी के विवाह की लीला जो मैं बताना भूल गया, 5 मिनट्स। बलराम जी के विवाह की बहुत सुंदर लीला है। एक बड़े राजा थे जिनकी पुत्री थी का नाम था रेवती, और सत्ययुग या त्रेता युग की कहानी है। और उनकी इच्छा थी कि उनकी वो अपनी पुत्री का विवाह एक योग्य वर से करना चाहते थे। तो अब जानते हैं उतना आसान नहीं है तो वर ढूंढना। तो अपने पुत्री के लिए योग्य पति ढूंढने के लिए घूमते घूमते ब्रह्मलोक तक पहुंच गए ब्रह्मा जी से सलाह लेने के लिए। ब्रह्मा जी मीटिंग में थे, जैसे अक्सर प्रेसिडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो ब्रह्मा जी कुछ मिनट बाद बाहर आए अपने कैलकुलेशन से। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि आप जाओ धरती पे, इस समय बलराम जी हैं, ये द्वापर युग चल रहा है, आप अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी से करा दो। तो निकल पड़े। लेकिन उससे हुआ क्या कि सत्ययुग चला गया, त्रेतायुग चला गया, द्वापर युग आ गया। और व्यक्ति का कद छोटा होता जाता है, जैसे अभी आज अभी व्यक्ति का कद 5 या 6 फीट से ज्यादा नहीं होता, मुश्किल से कोई 7 फीट तक होगा। लेकिन द्वापर युग में लोग 10-12 फीट के होते थे, उससे पहले त्रेतायुग और भी लंबे। आप कभी चित्रकूट जाओगे तो वहां पर एक गुफाएं हैं जहां भगवान राम रहते थे, और गुफाएं बहुत ऊंची ऊंची हैं। और वहां के लोग बताते हैं क्योंकि भगवान राम इतने लंबे थे कद के। तो जब वो प्रपोजल लेकर गए बलराम जी के पास और बोला कि मेरी पुत्री के साथ विवाह करना है, तो बलराम जी बोले ठीक है मैं देखना चाहता हूं। तो उनको ले गए अपनी पुत्री का दर्शन कराने। अब बलराम जी ने देखा, क्योंकि रेवती तो सत्ययुग के समय के थी और बलराम जी द्वापर युग के, तो बलराम जी देखने लगे। ये कैसे मैच होगा। तो बलराम जी अपना हल लिया और साइज का कर दिया। आप कभी दाऊजी मंदिर में जाओगे वृंदावन में, तो रेवती की भी बहुत सुंदर मूर्ति है। और बाद में उनके विवाह रेवती और बाद में कांति के साथ। लेकिन जैसे आज सुबह मुरारी प्रभु जी बहुत सुंदर प्रवचन दिए थे, मैं नहीं था लेकिन मैंने सुना भक्तों से, उन्होंने अंत में बताया कि हम बलराम जी को अप्रोच करते हैं नित्यानंद प्रभु के मूड में, क्योंकि हम सबकी मेंटालिटी जो है दुर्योधन की तरह है। या कभी कभी हमारी मेंटालिटी रुक्मी की तरह हो जाती है, कभी कभी कलिंग देश के राजा की तरह हो जाती है। लेकिन अगर हम बलराम जी के पास वैसे कृपा मांगे तो मांग सकते, मांगना चाहिए, लेकिन विशेष करके नित्यानंद प्रभु के रूप में हम उनसे कृपा मांगते। वही बलराम जो इसे वसुरों को मार रहे हैं, रुक्मी को मार दिया। खाली एक्चुअली कलिंग देश के राजा ने सिर्फ दांत ही दिखाए थे, तो इतना बुरा नहीं है, सिद्धांत तोड़ दिए। और जगाई मदाई ने तो मटके से आक्रमण किया था, क्या ज्यादा बुरा है, मटके से किसी के सिर पे आक्रमण करना या खाली हंसना दान दिखाना, ज्यादा अपराध जगाई मदाई ने किया था। और उनको कृष्ण प्रेम मिल गया, नित्यानंद प्रभु उनको बदले में मारा ही नहीं। इसलिए नित्यानंद प्रभु का मूड जो है वो बहुत दया का है। सचिनंदन महाराज बोलते हैं ही इज लाइक अ ड्रंकन अंकल। ड्रंकन अंकल एक चाचा जो नशे में है। अमेरिका में अगर बच्चे को कुछ चाहिए तो अपने पिताजी के पास, चाचा के पास उस समय जाते हैं जब वो नशे में होते हैं, और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, हफ्ते में एक बार हो ही जाता है ऐसे। अगर आप, अगर वो व्यक्ति अपने चाचा से बोलते हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए $10 या $100, तो बोलेंगे नहीं अभी नहीं बाद में लेना। लेकिन जब वो नशे में होते हैं पूछे $100 चाहिए, बोले 100 क्यों, ये लो 500 ले लो, 1000 ले लो। से नित्यानंद प्रभु बलराम ही है लेकिन अलग मूड में है, वो दया के भाव में। अक्रोध है बलराम जी, सक्रोध है। दुर्योधन को डर दिखाया, वो सांब और लक्ष्मण के विवाह में द्विविद को मारा, बलवल को मारा, रोमहर्षण सूत के खाली मानसिक अपराध से उसको मार दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु के रूप में अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, बिना क्रोध के हैं, सबको कृपा दिखाते हैं। इसलिए हम उसके उनकी प्रार्थना करते हैं नित्यानंद प्रभु से, बलराम जी से, कि हमको हरि नाम दें और हमको हमारे सबके अंदर जो दुष्ट प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाए। सब लोग आंख बंद करके 2 मिनट प्रार्थना करें। श्री बलराम जी की जय, श्री नित्यानंद राम की जय। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बलराम जी के सबसे दयालु प्रतिनिधि हैं शिला प्रभुपाद, जिन्होंने की कृष्ण कृपा सबको बांटी है। इसलिए हमेशा शिला प्रभुपाद को हमें धन्यवाद देना। शिला प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया।